أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم لوگ پچھلی دفعہ جو بات کر رہے تھے تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ انسان اس زندگی میں جو اعمال اور افعال انجام دیتا ہے، وہ چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن قیامت میں انسان کے عمل اور کردار کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جائے گا، یا اس کی کیا حیثیت بنے گی. بیسیکلی ہم آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیک عمل انجام دیا، ہم نے عبادت کی، ہم نے نماز پڑھی، یا خدا نہ خواستہ کسی انسان نے کوئی برا کام کیا، آخرت میں اس کی حیثیت کیا ہے اس عمل کی، یا خدا جو ہے وہ اس عمل کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ یہ عمل کیا ہوگا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا تو ہمارے لیے آخرت میں ثواب ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے برا کام کیا اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے. ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے اور اس حوالے سے قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیا بیان کرتا ہے. اس کے مقدمے کے طور پر اس گفتگو کے پچھلی دفعہ جو جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ یہ تھی جو میں نے سورہ مدثر کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. کہ یہ آیت ایک بڑا عجیب نظریہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا اس کے سبب سے، اس کے بدلے سے گروی ہے، رہین ہے، رہن رکھا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس دنیا میں ہم اور آپ اس وقت پائے جاتے ہیں، یہ دنیا، اس کو قرآن نے اسفل السافلین کہا. اچھا، دنیا سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہوگی، یعنی کہ دنیا کیا چیز ہے، کہ یہ زمین و آسمان نہیں بلکہ اس دنیا میں موجود لعب و لہب و زینت و تفاخر و تکاثر والے جو پہلو ہیں، یہ حیات دنیا ہے جس میں کہ ہم سب بہرحال پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان پانچ چیزوں میں مبتلا نہ ہو اس حیات دنیا میں. یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو لعب لہب و زینت و تفاخر و تکاثر سے آزاد ہو. ہمیں اپنے کو اس سے آزاد کرانا پڑتا ہے. آزاد کوئی نہیں ہوتا، ہم سب اسی میں پھنسے ہوئے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو ہم اس حیات دنیا میں، کہ جس کی حقیقت جہنم ہے، کہ ہم گویا جہنم میں ہیں. ہمارے سامنے یہ زندگی نہیں ہے کہ ہم ایک کسی زیرو پوائنٹ پہ کھڑے ہوں اور ہم کہیں کہ اس رستے پر چلا جائے انسان تو جہنم میں کا شکار ہو جائے گا، اس رستے پر چلا جائے تو جنت کو پالے گا. نہیں، ہم جہنم میں ہیں اور ہمیں جہنم سے یا نکل پائیں گے انتقال تک یا نہیں نکل پائیں گے. یعنی ہمارا جو یہاں پر چیلنج ہے کہ جب تمہارا وقت انتقال آئے اس سے پہلے پہلے اس جہنم سے باہر آ جاؤ. یہ چیلنج آف لائف ہے. اور اس کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ، تو ان کے جو کچھ ہم کمائیں گے اس کو فدیہ دیں گے اپنی جان کا، اور اپنی جان کو چھوڑائیں گے اس کے بدلے میں. یعنی کہ جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہماری نیتیں، ہر چیز انسان کی کمائی ہے، اس کو ہم دیں گے ایز اے پرائز. اور اس کے بدلے میں کس کو چھوڑائیں گے؟ اپنے نفس کو چھوڑائیں گے اس جہنم سے کہ جس میں ہم پھنس گئے، پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. اب میں نے کہا تھا کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے آخرت کے حوالے سے انسان کے اعمال کا جائزہ لیں گے، آخرت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی کہ میں یہ اس اعتبار سے اچھے اور برے اعمال کے ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ جو ہیں وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یتیم کا حق دینی، بلکہ قرآن نے جہاں جہاں پر اعمال کو اسپیسیفکلی قیامت کے تناظر میں بیان کیا ہے. میں ان آیتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آخرت کے عنوان سے انسان کے عمل کی کیا حیثیت ہے. اچھا، اس میں پھر ہم ان تمام آیتوں میں آپ ایک چیز اور دیکھتے رہیے گا، یعنی وہ مسئلہ بھی ہائی لائٹ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی، کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ انسان حقیقتاً نفس ہے، یعنی قرآن نے جہاں جہاں لفظ نفس استعمال کیا ہے وہیں پر ہی خود انسان کی طرف اشارہ کیا ہے. اور انسان نہ جسم ہے نہ روح ہے، یعنی قرآن کی اصطلاح میں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی روح کی حقیقت ہے اور وہ، لیکن قرآن کی اصطلاح میں یہ ڈسٹنکشن بہت کلیئر ہے کہ روح وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کو ہیلپ کرتی ہے ان ایلیویشن، جسم وہ ٹول ہے کہ جو انسان کو مدد دیتا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے میں یا کسی بھی عالم میں زندگی گزارنے میں، اور انسان کے وجود کی اپنی حقیقت اس کا نفس ہے، جیسے آپ میں کہتے ہیں، جیسے آپ اپنے سیلف کہتے ہیں، وہ اس کا نفس ہے. اب ان آیتوں کو، یعنی کہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو ہمیں آج بالکل سینٹر میں رکھ کے اور اس کے گرد باقی آیتوں کا ایک پورا نظام بنانا ہے، لیکن پہلے ایک آیت سن لیجئے کہ تاکہ اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 25، یہ آیت ہے کہ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، فَكَيْفَ پس کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے سے ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہے، اِذَا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، ان سب کو جمع کریں گے، تمام انسانوں کو، لیومن، اس دن، بلکہ یہاں پر یوم کا مطلب ظاہر ترجمہ دن ہے، لیکن یوم سے مطلب یہاں پہ ہمیشہ آخرت کی اسے مرحلہ ہے، سٹیج، وہ وقت یا وہ سٹیج، کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لا ریب فی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کس میں شک نہیں ہے، اس یوم کے آنے میں شک نہیں ہے جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، وفیت توفع کا، وفا کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے تھے کہ وفا کسے کہتے ہیں، پورا پورا بغیر کمی بیشی کے حوالے کر دینا، وفیت، اور ان کے حوالے کر دیا جائے گا بغیر کسی کمی بیشی کے، کس کے، کل نفسن، ہر نفس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اجر یا ریوارڈ لینے والی حقیقت ہے اس کا، وہ کون ہے، نفس ہے، روح نہیں ہے. وفیت کل نفسن، ہم پورا پورا حوالے کر دیں گے ہر نفس کے، کیا چیز، ما کسبت. اب یہاں پر اگر آپ لوگ عربی تھوڑا سیکھ رہے ہیں تو مجھے ایک فرق بتائیے گا کہ ما کسبت اور بما کسبت میں کیا فرق ہوگا. ما اور بما
نفی کے معنی
میں آتا ہے نا، ما یہاں
نہیں، ما یہ تو اس میں موصول ہے،
ما
یہاں پر ہے وہ تو اس میں موصول
ہے، ہاں، یعنی کہ جو کچھ،
بما جو ہوگا تو اس میں پھر ایک دم بدل جائے گا، کیونکہ پھر وہ جار مجرور ہو جائے گا، وہ اس میں موصول نہیں رہے گا.
نہیں، مطلب کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا، ماں، دیکھیے
با کا جو مطلب ہوتا ہے وہ تو اس سے ہوتا ہے پریپوزیشن،
حرف جر،
وہ تو حرف جر، تو
ماں ہو جائے گا تو جار مجرور ہوگا، جار مجرور ہوگا تو
نہیں، وتھ واٹ، اس پہ ماں کا مطلب ہوا وتھ واٹ، اور ماں کا مطلب ہوا واٹ،
یعنی
تو پھر وہ ماں استفامیہ ہو جائے گا.
یعنی بما کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کے ذریعے سے، بائی ورچو آف دیٹ، اور ماں کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کچھ ہے. ماں ایک تو آپ نفی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا ماں نفی نہیں ہے، ماں کا مطلب ہے جو جو. تو قرآن کریم میں یہ ترکیب جو ہے نا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ آخرت کے حوالے سے انتہائی اہم کنسیپٹ ہے، اس کو غور سے، کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں میں بہت زیادہ آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ. وفیت کل نفس ما کسبت، हम हर नफ्स को, हर नफ्स कुल नफ्स, यानी इसमें कोई नफ्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, हर नफ्स उसको पूरा का पूरा हवाले कर दिया जाएगा, मां कसबत जो उसने कमाया, न कि जो उसने कमाया है उसके बदले में कुछ और। फर्क समझ रहे हैं? बेमां कसबत होता तो यानी जो कमाया उसके नतीजे में हम उसको देंगे, यानी जैसे आप कहें कि आपने डॉलर कमाए और डॉलर कमाने के नतीजे में वसाइले जिंदगी खरीदे, तो ये बेमां है। सही है कि आपने जो चीज कमाई वो आपका हकीकी सरमाया नहीं है, यानी आपसे कहें कि ये डॉलर आपका सरमाया, आप कहें नहीं ये मेरा सरमाया नहीं है, ये वसीला है, ये कमाई उन चीजों के हासिल करने के लिए कि जिनकी मुझे जिंदगी में हकीकतन जरूरत है। लेकिन जब कहा जाएगा मां कसबत तो इसका मतलब है कि जो कमाया है वही सरमाया है, तो ये बेमा नहीं है, मां कसबत जो कमाया है वही सरमाया तुम्हारे पूरे का पूरा आखिरत में हवाले कर दिया जाएगा। अभी ये एक नहीं, बहुत आयतें ऐसी हैं जो मैं आपके, और आज यही चीज मुझे समझाना है कि आखिरत के हवाले से इंसान की कमाई और उसके अमल की क्या हैसियत है, ये बात मुझे समझाना है। आले इमरान 25, ठीक है। तो फकैफा, पस क्या कैफियत होगी, इज़ा जमअनाहुम, जब हम इन सब को जमा करेंगे, लियौमिन उस दिन, ला रैब फी जिसमें कोई शक नहीं है, वुफियत और हवाले किया जाएगा पूरे का पूरा, बावफा यानी वफा कहते हैं ना, पूरे का पूरा बगैर कमी बेशी, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को, मा कसबत जो उसने कमाया, न कि जो कमाया उसके बदले में कुछ नहीं, जो कमाया वही पूरे का पूरा हवाले किया जाएगा, यानी वही हकीकी अजर है हम सबका। और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयतें जैसे सूरह वन्नजम में भी है कि वह अनलैसा, ये जिनके साथ, जिनके, जिनसे हमने बुनियादी तौर पर ये सीखा, आगा जाफ़र साहब इन इस रस्ते को जिन आलिम के साथ बैठ के हमने सीखा, तो उनके साथ बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो कुरान के हवाले से सामने आती थी, कि ये एक आयत जो बहुत पढ़ी जाती है सूरह वन्नजम की आयत है कि वह अनलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, बहुत पढ़ी जाती है, और इसका तर्जुमा हमेशा ये लिखा जाता है कि और इंसान को उतना ही मिलेगा जितना कि उसने कोशिश की, जबकि उन्होंने फौरन इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि आयत ये नहीं है, अनलैसा नहीं है लिल इंसान, इंसान के लिए, इल्ला मगर ये कि मा सआ जो उसकी कोशिश है, न कि जितनी कोशिश है, यानी कि कोशिश ही इंसान का अजर है, न कि कोशिश के बदले कोई और चीज अजर है, हकीकी जो सरमाया है इंसान का। अनलैसा लिल इंसान है, नहीं इंसान के लिए, इल्ला मगर मा सआ जो उसकी सही है, यानी इसको मैं बहुत कॉमन सी एक एग्जांपल दूं कि एक शख्स है मिसाल के तौर पर बेरोजगार हो गया, घर में परेशानी हो गई, तकलीफ़ हो गई, वो सुबह से निकला और उसने पूरी दयानतदारी के साथ निकला कि मैं रोज़गार की तलाश में निकलता हूँ ताकि मोहताजी से बचूँ, परेशानी से बचूँ, अपनी इज्जत नफ्स को महफूज कर सकूँ, बिल्कुल उसने सही नीयत रखी। सुबह से शाम तक वो कोशिश करता रहा, मारा मारा फिरता रहा, उसको कोई कामयाबी नहीं हुई। हम क्या कहेंगे, ये शख्स नाकाम नामुराद घर को लौटा, कुरान की ये आयत क्या कहेगी कि जो इसकी कोशिश है वो उसका अजर है, यानी इसको बज़ाहिर इस कोशिश के बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन आखिरत के हवाले से ये चीज़ फ़र्क डालने वाली नहीं है, नामे अमल के हवाले से इसका डिफरेंस नहीं है, जो कोशिश है वो अजर है, उसके बदले में एक्स वाई जेड चीज़ों का मिलना वो और है, वो एक अलग मामला है, और ख़ास तौर से दुनिया में, क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों की कोशिश के लिहाज से हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट आता है। आप देखें बहुत सारे लोग हैं मेहनत नहीं करते, बहुत कुछ मिल रहा है, بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں اس کے حساب سے نعمت دنیاوی کچھ بھی نہیں مل رہی ہے. تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو کوشش ہے وہ اجر ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک عالم نے ایک سائنٹسٹ نے جو ایفرٹ کی ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے جس نیت سے وہ اس کا اجر ہے, نہ یہ کہ اس کے بدلے میں اس کو نوبل پرائز ملا یا نہیں ملا یا فلاں ایوارڈ ملا یا نہیں ملا, یہ اجر نہیں ہے. یعنی میں نے اس چیز کو بالکل ڈائلیوٹ کر کے کہ آپ اس کو سمجھ لیں, اصول سمجھ لیں. تو قرآن کی نظر میں عمل خود اجر ہے. جو کچھ ہم کماتے ہیں, اور کمائی میں سب شامل ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کس نیت سے کام کیا, کیا سوچ کے کیا, کیا انٹینشن تھی, کس طریقے سے کیا, جائز تھا ناجائز تھا, حلال تھا حرام تھا, غصب تھا نہیں تھا, یہ سب چیزیں شامل ہوتی کمپلیٹ. یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جی
نیت آپ کی صاف ہے بٹ آپ محنت بھی اسی لیے کر رہے ہیں, مگر فار ایگزامپل یو آر ورکنگ ان آرگنائزیشن جو کہ وہ نہیں ہے جیسے بینکنگ انڈسٹری انشورنس ہے,
مطلب وہ تو ایک دوسری طرف چلا گیا نا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریوارڈ ہے انسان کا خدا کی نظر میں, جو ہمارے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے, جو چیز قیامت میں ہمیں پوری پوری ملے گی, وہ کیا ہے؟ صحیح ہے, ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے ایک بالکل ہمیں کلیئر ویژن دے رہا ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا, وہ بہت سارے لوگ, اب تو مجھے نہیں پتا, لیکن پہلے تو یہ بہت کامن سی چیز تھی اور ابھی بھی ہے کہ جناب نظر اس لیے کراتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو, مجلس اس لیے کراتے ہیں کہ کاروبار اچھا چلے. یعنی یہ بہت کامن سی چیز تھی. اور مولانا غلام عسکری صاحب کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو, ان کی مجالس پہلے ہم نے بہت سنی, وہ اس طریقے سے بہت پڑھتے تھے, مثالیں دے دے کے کہ ایک سال مجلس کی نظر کیا اور اس کے بعد جناب کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا, اب خدا پہ غصہ ہو رہے ہیں کہ دیکھیں خدا کو ہمارا اتنا بھی خیال نہیں, ہم نے اتنا کیا, اتنے پیسے خرچ کر دیے, 500 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, اتنی دیگیں چڑھا دیں اور ہمارے کچھ خیال ہی نہیں کیا ہمارے مفاد. یہ نہیں, یہ اجر اور ثواب والا یا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ. یہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا اور پورے کا پورا بغیر کم و بیشی, بلا کم و کاست, جو انسان کے نفس کے حوالے کیا جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ ما کسبت, جو اس نے کمایا, نہ کہ جو کمایا اس کے وسیلے سے کچھ اور. ٹھیک جی جی بولیں. اتنا اس پہ میں نہیں روشنی ڈال سکتا, اتنی گرامر پہ. یہ فیمینن اس کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے شاید, نفس کی وجہ سے. ان النفس لأمارة بالسوء, یا ایتہا النفس المطمئنة ارجعی. اچھا, اب اسی آل عمران میں آیت نمبر 30 یوم تجدو, پھر وہی آخرت کے حوالے سے کہ اس دن تجدو پائے گا, کل نفس, ہر نفس, جب آخرت اور قیامت کے دن واقع ہوگا تو پائے گا ہر نفس, کیا چیز پائے گا؟ ما عملت, جو اس نے عمل کیا, من خیرن, خیر میں سے, معذرن, کہ اس کو حاضر کیا جائے گا. محضر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لا کے حاضر کرے گا, حاضر نہیں بلکہ محضر, یعنی حاضر کیا جائے گا اس کو, کہ کوئی
حاضر کیا ہوا.
ہاں, یعنی کہ کوئی حاضر کرانے والا ہے نفس. ابھی یہاں پہ بظاہر یہ ہے کہ نفس خود نہیں حاضر کرا رہا, اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا جو بھی عمل خیر کیا, یعنی عمل اپنے سامنے موجود پائے گا حاضر. من خیرن وما عملت من سو, اور جو عمل کیا ہوگا برائی میں سے. ठीक। तो क़यामत के दिन, आखिरत के दिन क्या चीज़ है कि जो भी इंसान के आमाल हैं वो उसके सामने हाजिर किए हुए होंगे। अभी इसकी थोड़ी सी तशरीह इंशाल्लाह और आएगी कि हाजिर किए हुए होंगे तो उसकी नौइयत क्या होगी, किस तरीके से हाजिर होंगे, कौन हाजिर करेगा, किस तरीके से क्या होगा, ये चीज़ें अभी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तीसरा सूरतुल क़यामा, सूरतुल क़यामा का नंबर 75 है और इसमें छोटी छोटी आयतें, और सूरह क़यामा यानी कि पूरा का पूरा है ही क़यामत के ही हवाले से। तो आयत नंबर 6 से, यस अलो अय्याना यौमुल क़यामा, ये लोग सवाल करते हैं कि क़यामत का दिन कब आएगा, क़यामत का यौम कब आएगा। फ़ाइज़ा बरक़ल बसरो, जब नज़र के सामने बिजली चमक जाएगी। वख़सफ़ल क़मरो, चांद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। व जुमा अश-शम्स वल क़मर, और सूरज और चांद एक साथ जमा कर दिए जाएंगे। यकूलुल इंसानु, उस वक्त इंसान कहेगा। यौमइज़िन अइनल मफ़र, फ़रार करने की कोई जगह है, भागने की, यानी इसका मतलब है कि ज़मीन पर कोई बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी, ख़ुद ज़मीन पर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी, कि जिसका इशारा सूरह इब्राहिम की आयत में, कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु ग़ैरल अर्ज़, कि जब हम इस अर्ज़ को एक दूसरी अर्ज़ से, दूसरी ज़मीन से बदल देंगे। तो इस किस्म की बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, उस वक्त इंसान वहशत ज़दा होकर कहेगा फ़रार की कोई जगह है, कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, अब नहीं भाग सकते। इन इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तकर, अगर कोई ठिकाना है, अगर कोई पनागाह है, तो वो तेरे रब के पास है। अब ये नहीं है कि अपने लिए महफूज पनागाहें बना लो, गार बना लो, बिल्डिंगें खड़ी कर दो, और उसके बाद कहो कि ठीक है खुदा पना दे ना दे, ये हमारी पनागाह है। अब कुछ नहीं, कि जब इंसान के सामने ना उसको नज़र आ रहा होगा कि अब भागने की कोई जगह नहीं है, तो क्या आइनल मफ़र, कोई जगह है फ़रार करने की, कहा जाएगा कुछ नहीं हो सकता, जिसने अपने रब के पास अपना ठिकाना बना लिया बस वही महफूज है, बाकी और कोई पनागाह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तकर, युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन, और उस दिन क्या होगा, युनब्बअु, खबर दी जाएगी अल इंसानो, इंसान को, यौम इज़िन, उस दिन, मा बेमा कद्दमा व अख़र, खबर दी जाएगी, यहाँ बेमा है कि जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ दिया, बेमा, उसके वसीले से उसको खबर दी जाएगी, वो सब कुछ याद दिलाया जाएगा कि तुमने क्या आगे इकदाम किया, क्या पीछे छोड़ दिया। बलिल इंसानो अला नफसे ही बसीरतुन, बल्कि इंसान अला नफसे ही, खुद अपने नफ्स पर, यानी अपने सेल्फ पर, अपनी आई पर, बसीरतुन, यहां पर इंसान है लेकिन आगे जो चीज है, लफ्ज है, वो मुअन्नस है, होना ये चाहिए था कि इंसानुन बसीरुन, लेकिन यहाँ बसीरतुन है। तो ये तरकीब किस चीज़ को शो करती है, मुबालगे को, यानी कि जैसे अल्लामा, अल्लामा में ते जो है वो ताए मुअन्नस है, और ये इल्म के मुबालगे को शो करती है। तो बसीरतुन यानि बे इंतहा बा बसीरत है, समझ रहे हैं, यानी इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपने नफ्स पर बाबसीरत है, सिर्फ बाबसीरत नहीं है, सिर्फ अपने नफ्स के बारे में जानने वाला या अपने नफ्स की हालत को देखने वाला नहीं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बसीरतुन जो है ये वो अल्लामतुन के तरीके से, जैसे अल्लामा कहते हैं ना, अल्लामा यानी बे इंतहा इल्म, अल्लामा उसे कहते हैं कि जिसके इल्म की कोई इंतहा ना हो। तो बसीरतुन यानी बहुत ज़्यादा बाबसीरत है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि मेरे नफ्स में क्या है। वलौ अल्का माज़ीरा, चाहे कितने भी माजरत पेश करता रहे। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि खुदा इस किस्म की कोई बात कबूल करने को तैयार नहीं है आखिरत में, कि हम तो ये जानते नहीं थे और हम तो बेवकूफ़ बन गए और हमें तो फ़लाँ ने भटका दिया और हम इस तरफ चले गए। खुदा कह रहा है तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर ओन सेल्फ, और तुम सिर्फ इस ज़िंदगी में धोखा देते रहे, अपने आप को धोखा देते रहे, आज वो धोखा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वो मुख्तलिफ इन थोड़े थोड़े से नमूने मैं आपके सामने एग्जांपल्स पेश कर रहा हूँ जिनकी कसरत है क़ुरान करीम में, जिस किस्म की आयतों की, कि जो इंसान के आमाल को, उसके किरदार को, उसके हालत को, कि जो क़्यामत में होने वाली है, उसको बयान कर रही हैं। नहीं, मुबालगा है, बे इंतहा बाबसीरत।
इवन देन बे इंतहा समझ सकता होगा, जरूरी कि देखता होगा।
बसीर नहीं, देखने की बात है। बसीरत या बसारत जो है उसका ताल्लुक देखने से, समझना नहीं है।
ये तो फिर
समझना नहीं है
जो हम लोग दूसरा के समयम बसीरा इंसान को बना दिया, समयम बसीरा।
हाँ, तो बसीरा का क्या मतलब है? देखने वाला,
देखता नहीं,
देखने वाला।
जिस आयत में जो वहां पर आया है, उस वक्त इंसान देखता नहीं है क्योंकि वो तो अंदर होता है। तो बसीरा कैसे, इसके मतलब यहां पर भी वही चीज फिट होगी?
नहीं 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 नहीं, बसारत या बसीरत का ताल्लुक देखने से, कि खुदा ने इंसान को जाहिरी एक अज्व दिया आंख, और आंख के जरिए से ताल्लुक पैदा किया बसीरत का। लेकिन हकीकतन बसीरत वो है कि जो इंसान आंख के जरिए से देखे और दिमाग के जरिए से समझे। बलिल इंसान अला नफसे ही बसीरतुन।
यहाँ पर एविडेंस का है?
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको बाकायदा तफसीर से बता रहा हूँ, बाकायदा तफसीर से बता रहा हूँ। ये नहीं कि मेरा कोई एहतमाल है, ये एहतमाल नहीं अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि ये तफसीर से अर्ज कर रहा हूँ ये जुमला, कि बलिल इंसानो अला नफसे ही बसीरतुन। क्या है, जवादी आमली ने यह बात कही कि यहाँ पर अगर इंसान के लिए जिक्र हो रहा है तो बसीरुन काफ़ी था, लेकिन बाद में जो ता आई है, ये ता इसी तरीके से है कि जैसे अल्लामा की ता है, कि जो सीगे मुबालगा के लिए इस्तेमाल होती है, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इंसान बसीरतुन यानि बे इंतहा बाबसीरत, अपने नफ्स के अहवाल से बहुत अच्छी तरह बाखबर है। वलव अलका माज़ीरा, चाहे कि वो पेश करता रहे उज़्र व माज़रत, यानि कि वो सब झूठ फरेब। ठीक है, ये वो आयतों का पूरा एक नेटवर्क है कि जिससे हम बुनियादी तौर से इस बात को समझने के काबिल हो रहे हैं, दो तीन अहम उमूर को, कि इंसान को जो कुछ हवाले किया जाएगा आखिरत में, वो है जो उसने कमाया है, न कि उसके बदले में कुछ और। बदले में चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हकीकी सरमाया वही है जो हमने कमाया है। माँ का सबत है, न कि बेमा का सबत। और जब क़यामत का दिन वाक़ होगा तो उस वक्त सिर्फ़ एक पनाहगाह है, और वो है इंदर रब, रब की बारगाह में, उसके अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। हर चीज़ जिस पर इंसान का तकिया होगा इस ज़िंदगी में, आखिरत में सब का झूठा होना साबित हो जाएगा, सब का शिकस्ता होना साबित हो जाएगा, कि सिर्फ़ और सिर्फ वो हकीकत वाहिद है कि जिसने इस ज़िंदगी में उस पर तकिया किया, उसको अपना मस्कन करार दिया, उसको अपनी बुनियाद बनाया, खुदा और खुदा से ताल्लुक़ को वो महफूज है, बाकी हर चीज़ ख़राब है। हर चीज तबाह। एक आयत और देख लेंगे सूरह तहरीम में, इसका नंबर है 7। या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ये भी क़यामत के ही हवाले से है कि या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ऐ वो लोगों के जो काफिर हो गए। सूरह तहरीम, तहरीम का नंबर पता है 66।
और फिर बाद में जो अपने उसके बाद तो ये कोई मतलब टाइम फ्रेम में वो नहीं है क्योंकि वो टाइम के बारे में बता दिए, फिर तभी इंसान की नफ्स की हालत खुद वो अपनी नफ्स से बात करके तब तब के इंसानों को नहीं बता दिए
उस वक्त के इंसान, उस वक्त तो है ही है ये
जी जी,
लेकिन ये एक उसूली तौर से बात हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है ये आखिरत में जब पहुंचेगा तो अपने नफ्स पे बाबसीरत होगा और इस दुनिया में नहीं है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने नफ्स पर बाबसीरत है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस दुनिया में उज़्र माज़रत इधर उधर के बहाने बनाते रहते हैं। किसी ने बहाना बना दिया है कि मेम्बरों से गलत बात पढ़ा दी गई, किसी ने बहाना बना दिया है कि जनाब जॉब से वक्त नहीं मिलता, किसी ने कहा बच्चों से टाइम नहीं मिलता, जबकि अंदर हम में से हर शख्स इस बात को अच्छे तरीके से जान रहा है कि ये सारी की सारी ख़राबी हमारी अपनी है और अगर हम चाहें तो इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। जी
जी,
माँ कसबत
लेक्चर में आपने बताया था कि जो नेक अमल है इस दुनिया में दैट फॉर्म्स योर नफ्स, हमारे नफ्स पे असर अंदाज होता है और हमारे नफ्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, तो जो नेक अमल और जो नेकियां हैं वो नफ्स को पॉलिश करती हैं और हमारा नफ्स उसके रिजल्ट में बेहतर होता जाता है, तो इवन दिस के ये उससे थोड़ा सा
नहीं, आप अच्छी अच्छी बात आपने की, यानी मुझे थोड़ी देर बाद ये बात करनी थी।
अच्छा,
लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं इस आयत के बाद फिर उस आयत का रेफरेंस दे के इस बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा वो सवाल ओपन है। कौन सा सवाल ओपन है? कि यौमा तजदो कुल्लु नफ्सिम मा अमलत मिन खैर मुहज़रन, के उस यौम में हर नफ्स पाएगा कि उसके अमल को हाजिर किया जाएगा। अब ये हाजिर करने वाली चीज़ कौन है? यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारा अमल हमारे सामने लाया जाएगा, हाजिर होगा, तो ये हाजिर कर कौन रहा है और हाजिर होने के बाद ये अमल पाया कहाँ जाता है? ये दो सवाल अभी बाकी हैं इसका जवाब।
और हमें देख तो जाएगा।
हाँ, यानी कि हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, हमें पकड़ा दिया जाएगा, हमारे हवाले कर दी जाएगी हमारी कमाई, हमारे अमाल। तो इसकी नौइयत क्या है? यानी क्या हम मिसाल के तौर पर इस तरीके से देख रहे होंगे कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो क्या इस तरीके से आपका और मेरा अमल कोई एक्सटर्नल एंटिटी है जिसको हम देख रहे होंगे, या क्या होगा, क्या नौइयत होगी? ठीक है, ये इस सवाल तो अच्छा, ये जो सूरह तहरीम की आयत है, ये कह रही या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअ'तज़िरुल यौम, ये ऐसी उज़्र के हवाले से कि क़यामत में, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बहुत जो बज़ाहिर अजीब लगती है बात हमें, कि क़यामत में भी ये जितने भी कुफ़ार व मुनाफ़िक़ीन हैं ये जाके वहाँ झूठ बोलेंगे, जबकि हम समझते हैं ना कि आखिरत में इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये क़ुरान की आयतें हैं कि ये वहाँ भी झूठ बोल रहे होंगे जब हकीकत को देखेंगे। और वो झूठ क्या बोल रहे होंगे? कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, हम शिर्क नहीं करते थे, जबकि पूरी ज़िंदगी मुशरिकाना गुजार के आएंगे और कहेंगे हम शिर्क नहीं करते थे। तो फिर उसके बाद वो मौका आएगा कि जब खुदा कहेगा अब तुम मुंह बंद करो और तुम्हारे आज़ा और जवारे गवाही देंगे।
मतलब उनको उस वक्त भी समझ में नहीं आएगा कि आदमी जो है
नहीं, हम अब हिसाब में, हम हिसाब पे पहुंच गए, हकीकत समझ में आ रही है? नहीं, देखें ये एक बहुत ये बहुत ख़राब पहलू है, बहुत ख़तरनाक पहलू है। कि इस जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कि क़यामत में हर इंसान वो होगा जो कि वो है, न कि उसके पास ये अख्तियार होगा कि जैसा अपने आप को चाहूं प्रेजेंट कर दूं। बात समझ में आई? यानी इस दुनिया में हमारे पास अपने को प्रेजेंट करने का अख्तियार है। तो हमें से एक, तो हमें से हर एक अपने आप को वो बना के दिखा रहा है कि जो वो अंदर से नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। आखिरत में हर शख्स में से वही कुछ बरामद होगा जो कि वो है। तो ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन दुनिया में सिवाय झूठ के कुछ नहीं थे, तो आखिरत में भी इनसे जो बरामद होगा वो झूठ होगा।
मगर उनको ये समझ भी नहीं
आ रहा। समझ आ रहा है?
अल्लाह को सब पता है ऑलरेडी।
बिल्कुल। उसके बावजूद झूठ, उसके बावजूद झूठ बोलेंगे। दुनिया में भी तो ये करते रहे। नफ्स पे कौन से इम्प्रिंट है?
नफ्स उनके सामने होगा।
ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नफ्स पे नक्श क्या बना हुआ है कि इस दुनिया में भी समझ रहे हैं कि ये हक नहीं है, लेकिन सब कुछ यही कर रहे हैं। हाँ, यानी कि जो कयामत में क्या चीज़ होगी, यौम तुबलस सरायर के जो नफ्स की असल हालत है वो जाहिर हो जाएगी। तो ये पूरे का पूरा नफ्स जो बना है झूठ से ही बना है।
तो ये बुढ़ापे में भी आपने कहा था ना कि ऐसा,
उस वक्त भी ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, इस किस्म की चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं लोगों में कि जो उनके नफ्स की असल हालत है। यानी कि जैसे ज़्यादातर लोगों के बारे में हम कहते हैं ना कि बच्चों की तरह हो गया, बच्चों की तरह नहीं हो गया, वो बचपने से बाहर ही नहीं निकले कभी, बच्चों की तरह नहीं हो गए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो बचपने से बड़े हुए और फिर बच्चे हो गए, वो कभी भी बचपने से बाहर ही नहीं निकले थे। सिर्फ जवानी की ताकत की वजह से अपने को वो दिखाते थे जो वो नहीं है। जैसे ही वो ताकत रिमूव हुई, वो अंदर से नफ्स नजर आना शुरू हो गया। आखिरत भी यही है कि सारी की सारी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर गुजारी, तो वहां पहुंच के जब हक बिल्कुल सामने हो वाजे, वहां भी झूठ बोल रहे होंगे, हमने तो शिर्क नहीं किया, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो उस वक्त फिर खुदा कहेगा कि अब बंद, मुंह बंद, अब ये तुम्हारे आज़ाओ जवारे, तुम्हारे हाथ पैर ये गवाही देंगे तुम क्या करके आए हो। और जब हाथ पैर, यानी सब कुरान है, जब हाथ पैर गवाही देंगे तो वो उन हाथ पैरों से कहेंगे कि तुमने क्यों बोला हमारे खिलाफ। इस हद तक। तो बेसिक चीज़ क्या है कि जो भी क्वालिटीज़, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी ट्रेट्स हमारे नफ्स में इनग्रेंड हो रही हैं, जिस पर हम बाबसीरत हैं, यानी हम कभी भी अकेले और तन्हाई में बैठ जाएं, अपने आप पे गौर करें, हमें समझ में आ जाएगा कि नफ्स क्या है, हमारा नफ्स क्या बन रहा है, और यही बरामद होगा आखिरत में। तो या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम, ऐ वो लोगों जो काफिर हो गए आज के दिन, माजरत नहीं करो, बहाने नहीं बनाओ कि हम ये थे, हम वो थे, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, न कि बेमा कुंतुम तअमलून। इन्नमा तुजज़ौना, बेशक तुमको जजा दी जाती है, मा जो कुंतुम तअमलून, जो तुम अमल करते थे वही तुम्हारी जजा है। तो इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ डाला हो तो हमसे एतराज करो ना।
माफी की गुंजाइश नहीं,
देखिए माफी की गुंजाइश शायद निकले, लेकिन फौरी तौर पे तो नहीं होगी, फौरी तौर पे तो नहीं।
अच्छा, इसमें वो भी कहेंगे कि हमने नहीं किया जिन्होंने वाकई में कुछ नहीं
किया होगा। उनको जरूरत ही नहीं,
वो नहीं कहेंगे ना।
यानी हर चीज तो नजर आ जाएगी ना, निकल आएगा ना, यानी कि मैं और आप इस हालत में तो नहीं होंगे, मैं और आप अपने नफ्स की हालत में होंगे। तो हमें उसको, और अब जिस आयत को मैं कह रहा हूँ कि जो मेन है, जिस आयत को आज मुझे इंशाल्लाह डिस्कस करना है, कि उस आयत के हवाले से कि जब हम इसको समअप करेंगे तो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो खुदा ये कह रहा है कि तुम्हें ये इस वक्त लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, उज़्र माज़रत बहाना, ये किया वो नहीं किया, तुम्हें सिवाय उसके कि जो जो अमल किया है उसके अलावा कुछ हद दे ही नहीं रहे हम अपनी तरफ से कुछ घटाएं बढ़ाएं, तो हमसे लड़ाई करो, कि आपने ये क्यों किया और वो क्यों, हम तो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो तुमने कमाया है उसकी हकीकत तुम्हारे सामने कर दी है और तो कुछ की नहीं हमने। तो ऐ वो लोगों जो तुमने कुफर इख्तियार किया, ला ताअतज़िरुल यौम, ये किस बात की उज़्र माज़रत, यानी जैसे वही बात है कि एक इंसान है कि उसने तमाम सेहत के उसूलों को तबाह किया, सब कुछ ख़राब किया, अब उसके बाद बीमार पड़ गया, तकलीफ़ हो गई, तो अब शोर मचा रहा है। तो जो मुआलिज है या इर्द गिर्द घर वाले हैं वो क्या कहेंगे कि भाई ये सब कुछ तो तुम्हारा अपना किया धरा है, अब हमसे क्या शोर मचा रहे हो, हम तो इतने अरसे तक तुमको समझाते रहे कि ये ना खाओ, इस तरीके से ना रहो, ये आदतें ना अपनाओ, तुमने हमारी बात पे कोई कान ही नहीं धरे, उसको काबिल तवज्जो ही नहीं जाना। तो आज जो तकलीफ पहुंच रही है वो सब का सब तुम्हारे अमल की शक्ल है, तो अब शोर मचाने का क्या फ़ायदा है या उसका क्या हासिल है। अच्छा, अब हम उस गुफ्तगू को क्लोज़ कर दें कि ये हाज़िर कौन करेगा अमल को। ये सूरह तकवीर का नंबर है 81, और ये तमाम की तमाम सूरतें जो है ना ये सब आखिरत 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 के ही उनवान पर हैं, आखिरी पारे में। इसकी आयत नंबर 14 है, मैं आगे पीछे नहीं पढ़ता। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, अलिमत इल्म हासिल कर लेगा, हकीकत को जान लेगा हर नफ्स, मा फिर वही है बेमा नहीं है, मा अहज़रत जिसको उसने हाजिर किया। तो ये हाजिर करने वाला कौन है, खुद नफ्स है, ठीक है। यानी कि आले इमरान की आयत में मुहज़रन के उसके सामने हाजिर किया जाएगा, सूरह तकवीर की आयत क्या बयान कर रही है कि हर नफ्स इल्म हासिल करता है, इल्म रखता है, मा अहज़रत जिसको वो हाजिर करे। तो ये हाजिर करने वाला भी नफ्स है। अब उस आयत को देख लेते हैं कि जो बिल्कुल यानी समझ लीजिए कि जहाँ से तीन आयतें कि जहाँ से हमें ये कंसोलिडेट हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा कंसेप्ट, और वो तीन आयतें हैं फ्रॉम 13-15 सूरह बनी इसराइल, 13-15 बनी इसराइल, बनी इसराइल का नंबर 17 है अगर आप इसको रिव्यू करना चाहें तो। वकुल्ला इंसानिन, अब यहाँ फिर हर एक के लिए ये सब, ठीक है, कुल्लो नफ्सिन, अब इसमें देखें कोई इस्तेसना नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, हर इंसान, कुल्ल इंसान इन क्या होगा हर इंसान के साथ, अल्ज़मना हो हमने उसको लाजिम कर दिया है, यानी वी हैव मेड इट नेसेसरी, वी हैव मेड इट इनकम्बेंट अपॉन हिम, अपॉन एवरी ह्यूमन बीइंग, क्या चीज़ क्या लाजमी कर दी है, ताएरहू उसके ताएर को। अब ये ताएर क्या चीज़ है, ताएर के या तैर के लफ्जी मायना अरबी जबान में परिंदा, या बाज़ औक़ात लुगत में ये भी बयान किया जाता है कि समथिंग दैट कैन बी स्कैटर्ड, समथिंग दैट फ्लाइज, ठीक है, लेकिन अरबी में या अरबी मुहावरे में ताएर या परिंदे के हवाले से कई सारी बातें हैं, यानी बाकायदा जो मुहावरे अरब में मौजूद हैं। परिंदे के बारे में अरब कहते हैं कि ताएर जो है वो इंसान को कभी छोड़ता नहीं है, यानी आज भी आप अरब में देखेंगे कि जितने उनके वो हैं शुयूख वगैरह कि वो अपने दाहिने हाथ पर उन्होंने एक उकाब बिठाया हुआ होता है, कि अरबी में यह है कि परिंदा जैसे कि शिकारी के लिए शिकार के लिए भेजा जाए, या वो कि परिंदा इंसान के साथ साथ रहता है। अब सहरा में रहने वाले की यही ऑब्जर्वेशन है खुले उसमें कि परिंदा इंसान को नहीं छोड़ता, परिंदा अगर दाहिने हाथ पर आके बैठे तो उसे अरब कहते हैं कि ये अच्छा शगुन है, यमीन, और इसी से शायद असाब यमीन वाली इस्तेला भी है कि दाहिने हाथ वाले, कि दाहिने हाथ पर परिंदा हो या दाएं हाथ में हो बाबरकत है, बाएं से युम्न है। بائیں طرف ہو تو بائیں سے بدبختی ہے, نحوست ہے. تو شاید یمین و شمال کی جو اصطلاح سورہ واقعہ میں آئی اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ شکار کے لیے جب کوئی شکاری پرندے کو اڑاتا ہے تو وہ پرندہ فضا میں بلند ہوتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, واپس شکاری کے پاس آ جاتا ہے. یعنی پرندہ پرواز کرتا ہے فضا میں, دور جاتا ہے, لیکن پلٹ کے مالک کے پاس ہی آ جاتا ہے, اس سے جدا نہیں ہوتا. اور وہ جو چیز سورہ یاسین میں بھی ہے کہ طائرکم معکم, کہ تمہارے طائر تمہارے ساتھ ہیں, وہ طائر شاید اس معنی میں ہوں کہ پرندوں سے فال بھی نکلوائی جاتی تھی, جو ہمارے یہاں بھی نا طوطے سے اور اس سے, کہ پرندے جو تھے وہ فال کے لیے بھی یوز ہوتے تھے, استعمال ہوتے تھے. طائرکم یعنی تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ. تو مختصراً اس بیک گراؤنڈ کے بعد کہ طائرہو یعنی انسان کے اعمال, کہ انسان کے اعمال بھی گویا پرندے کی مانند ہیں کہ جو بلند ہوتے ہیں, پھیلتے ہیں, سکیٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جدا نہیں ہوتے, کبھی انسان کو چھوڑتے نہیں. تو اعمال انسان انسان کے نفس سے نکلتے ہیں, منتشر ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن انسان کو ترک نہیں کرتے. اس اصطلاح میں جو میننگ ہے نا, جو ڈیپ میننگ ہے, وہ یہ کہ طائر عمل کو طائر کیوں کہا؟ طائر اس لیے کہ جس طریقے سے کہ وہ پرندہ جاتا ہے, آگے نکلتا ہے, دنیا میں گھومتا پھرتا ہے, کام کرتا ہے, واپس آ کے اسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے.
تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں بھائی وسیبہ کے پختے اڑ گئے, تو وہ وہی
ہے. نہیں نہیں یہ طائر وہ ہے کہ جیسے جیسے انہیں کہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا کبوتر پیغام رسانی کے لیے, جس گھر سے جاتا تھا پیغام پہنچاتا تھا واپس آ جاتا تھا. نہیں نہیں اس پر ہمیں بحث نہیں کرنا. دیکھیے یہ محاورہ ہے کہ جو ایک کانٹیکسٹ میں استعمال, اب آپ کہیں پرندوں کے 10 یوزز میں بتا دیتا ہوں, مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا کہ پرندے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بظاہر اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو عجیب سا لگے گا. میں نے ایکسپلینیشن اس لیے دی کہ ترجمہ یہ کیا جائے گا, آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ ہم نے انسان کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا, ترجمہ آپ کو تقریباً یہ ملے گا. لیکن آپ سوچیں گے اس میں اگر عربی دیکھنے کی کوشش کریں گے, عمل ہے کہاں اس میں؟ یعنی پچھلی آیتوں میں تو ہمیں مل رہا تھا ماں کسبت, جو کمایا, یا عملت, یا ماں کنتم تعملون, تو وہاں تو عمل اور کسب کا لفظ مل رہا ہے آپ کو. یا آپ سوچتے رہیں گے کہ طائر کہاں سے آ گیا, طائر کا ترجمہ عمل کیسے ہو گیا؟ تو میں نے یہ بیک گراؤنڈ اس وجہ سے بیان کیا کہ طائرکم یا طائرہو, اس کا طائر یعنی جیسے پرندہ ہوتا ہے, کہ جو پرندے کی طرح عمل ہے, کہ رہتا ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے لیکن انسان سے نکل کے پھیلتا دنیا بھر میں, لیکن انسان کو نہیں چھوڑتا. طائرہو وکل انسان, اور ہر انسان کے لیے, الزمناہو ہم نے اس کے لیے لازم کر دیا, طائرہو طائرہو اس کا طائر, فی کہاں لازم قرار دے دیا, فی عنقہ اس کی گردن میں. یعنی ہر انسان کا عمل ہم نے کہاں لٹکا دیا, باندھ کے گردن میں. تو اس لیے اس کا اگر با محاورہ اردو میں ترجمہ ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا. اب یہ گلے کا ہار دو قسم کا ہو سکتا ہے, یا تو میڈل ہو کہ جس چیز کو انسان اپنے گلے میں لٹکا کے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے گلے سے دور نہیں کرنا چاہتا, یا خدا نخواستہ کسی کی گردن کی گرد لپٹا ہوا پھندا یا سانپ ہو. لیکن ہر انسان کا عمل ہم نے لازم قرار دے دیا کہاں, اس کی گردن کو. ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ سب کا سب کمپیکٹ فارم میں کہاں ہے؟ یہ لائک اے میڈل اور اے نوز ہینگنگ فرام مائی نیک, وہ ادھر ادھر ہے, ادھر لپٹا ہوا ہے ہر انسان کے لیے. طائرہ، تو یہ عمل کی کیفیت ہے کہ جو ہم سب کر رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، یعنی جو ہم سے دنیا میں منتشر ہو رہا ہے، جو ہم سے پھیل رہا ہے، لیکن جو چیز بھی ہم کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے. آگے کی آیتیں اس کی تشریح کرتی ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نُخْرِجُ ہم باہر نکالیں گے، لَهُ اس کو، کس چیز کو؟ اسی ہار کو، انسان کے لیے. یوم القیامت، قیامت کے یوم، کتابہو، ایک کتاب کی شکل میں، یعنی کہ جو کچھ ابھی کمپیکٹ فارم میں، انویزیبل فارم میں ہے اور ہر انسان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس کے گلے کا ہار بن کے، قیامت کا دن آئے گا تو ہم اسی چیز کو نکالیں گے. کتابہو، کتابن، یا لقاہ منشورہ، منشورہ کا مطلب کیا ہے؟ نشر کسے کہتے ہیں؟ نشرہ نہیں، نشرہ نہیں ہے، نشر، نون شین رے، نشر جیسے کہتے ہیں نا نشریات، تو نشریات کسے کہتے ہیں؟ خبر کو جب آپ کہتے ہیں نشریات، انہیں پھیلا دینا، اسپریڈ، اسپریڈ. یعنی اس کو اگر علمی زبان میں بات کریں تو ابھی عمل ملفوف ہے، لپٹا ہوا ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ منشور ہو جائے گا، پھیلا دیا جائے گا. یعنی کہ ان سب کو انسان کس شکل میں دیکھ رہا ہوگا؟ ایک پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں دیکھ رہا ہوگا. صحیح. نخرجو لہو، اس کے ہم نکالیں گے اس کے لیے، یوم القیامہ، قیامت میں، کتابیں، یلقاہ منشورا، ایک کتاب جس کو وہ پھیلا ہوا دیکھ رہا ہوگا. یعنی پھیلا ہوا دیکھنے سے مطلب یہ نہیں کہ پورا، بلکہ زندگی میں جو کیا وہ ایک 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 چیز سامنے آ رہی ہوگی، سامنے موجود ہوگی، جیسا کہ پوری پھیلی ہوئی کتاب کہ ڈے دس، ٹائم دس، یہ کام کیا، یہ اس کا رزلٹ، اس دن اس وقت یہ عمل انجام دیا، اس دن یہ سوچا، اس دن یہ فکر کی، اس دن یہ نیت کی، پورے کا پورا کیا ہوگا کہ وہ پھیلا ہوا ہوگا. لیکن پھیلے ہوئے کا مطلب ہم کہیں گے اگر ایک زندگی کی کتاب بنا کے پھیلا دی جائے تو نہ معلوم کتنے میلوں کی ہو ایک انسان کی. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے کہ جیسے آپ کے آج کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے نا کہ ڈیٹا جو اتنا زیادہ میگا بائٹ اور گیگا بائٹ اور وہ سب کا سب ایک کمپیکٹ فارم میں موجود ہوتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے لیے وہ پوری کتاب کی مانند ہے، پڑھنے والے ریڈر کے لیے پوری کتاب کی مانند ہے. پھر کیا کہا جائے گا؟ کتاب نکال کے پھیلا دی جس میں ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کا ریکارڈ موجود ہے، ظاہری باطنی سب. اب کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کتاب کو نہیں، اقرا پڑھ کتابک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا مصنف ہے. وی آر رائٹنگ اے بک، اور وہ بک کیا ہے کہ جو میری زندگی کے ایک ایک عمل کے ریکارڈ پر مشتمل ہے. جیسے میں نے کہا صرف عمل نہیں، اس میں یعنی عمل کو حرکت میں کون سی چیز لائی، کس وجہ سے انسان نے یہ کام کیا، عمل کو انجام دینے کے لیے کون سے وسائل اختیار کیے، کس کا حق مارا، نہیں مارا، کس کے ساتھ نیکی کی، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل. اب اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو. کفا کافی ہے، بے نفس کا اپنے نفس پر، الیوم آج کے دن، اس مخصوص دن، علیکا یعنی بھائی علیکا حسیبہ، کہ تو خود کافی ہے، ہر نفس خود اپنے آپ پر آج کے دن حساب لینے کے لیے، یعنی کوئی اور حساب نہیں لے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ قیامت میں کوئی دوسرا کھڑا ہو کے حساب نہیں لے رہا ہوگا انسان کا، بلکہ وہ زندگی کی کتاب جو ابھی ایک کمپیکٹ فارم میں ہم سب کے گلے میں موجود ہے، وہ پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں آ جائے گی اور ہم سے کہہ دے گا اس کو پڑھ لو. اور آج کے دن اپنا حساب لینے پر، اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر تم خود کافی ہو، ہمیں کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا دن کیا ہے؟ جب حق ظاہر ہو چکا، ہر چیز واضح ہے، اور کوئی انسان इस बात का इख्तियार नहीं रखता कि जुल्म के जरिए से गलत को सही मनवा ले। ठीक है, यानी जैसे इस जिंदगी में ना कि आप किसी के सामने चार्ट शीट रखें, वो ताकत होगी वो सब फाड़ फूड़ के फेंक देगा और पेश करने वाले को अलग मारेगा, लेकिन आखिरत में क्या है, अब इंसान से ये अख्तियार ख़त्म हो गया है, अब उसके पास वो कुव्वत और ताकत नहीं है कि वो सही को गलत और गलत को सही बना दे, या जबर और जुल्म के ज़रिए से चीज़ों को कुछ का कुछ कर दे, अब ये ताकत नहीं है। तो कफा बिनफ्सिका अल्यौमा अलैका हसीबा, अपनी किताब को पढ़ ले और आज के दिन नफ्स तेरा नफ्स काफ़ी है खुद अपने ऊपर हिसाब लेने के लिए। बात वाजे हो रही मतलब खुद वो वही चीज है जो हम सब करते रहे, वही जो जिससे मैंने थोड़ा सा आसान अल्फाज में कहा था कि हर अमल का असर नफ्स पर है, यानी वो इसी को किताब समझ लीजिए, वही वो किताब बन रही है।
पता होगा कि ये मेरा ही वो
है। जाहिर, इसीलिए मैंने आपको पूरी आयतें बता दी ना, वो कि बलिल इंसान अला नफ्स ही बसीरतन, कि हर नफ्स हर इंसान जो है अपने आप पर बाबसीरत है, बहुत ज्यादा बसीरत रखने वाला है।
क्वेश्चंस आ रहे हैं जो
जी, मैं सिर्फ एक आयत पूरी कर लूं फिर हम, मन इहतदा, जो हिदायत पा गया, इहतदा मुहतदी हो गया, जिसको हिदायत दे दी गई, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिह। अब ये कुरान उसूल का बता रहा है कि अगर इन तमाम बातों को सुनने के बाद जिसने हिदायत को हासिल कर लिया, पैगाम समझ लिया, तो ये किसी और के लिए नहीं है हिदायत, लिनफ्सिह अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स के लिए, यानी जो भी हिदायत है उसका फ़ायदा खुद मुझे। वमन वल्ला, और जो गुमराह हो गया, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, वह सिवाय अपने किसी को गुमराह नहीं करता। जो हिदायत पा गया उसकी हिदायत का फ़ायदा खुद नफ्स को अपने लिए, जो गुमराह हो गया उसकी गुमराही का वबाल नफ्स के ऊपर। और क़ुरान करीम की आयत मायदा में है 105 या 106, ला यज़ुर्रुकुम मन वल्ला इज़ा तदैतुम, कि अगर तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे तो जो गुमराह है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये हम ये समझते हैं ना कि गुमराह में एक भटका देंगे, कोई गुमराह नहीं भटका सकता, ये भी खुदा का वादा है। ला यज़ुर्रुकुम ज़रर, नुकसान नहीं तुमको नुकसान पहुंचा सकता, मन वल्ला, जो गुमराह हो गया, इज़ा तदैतुम, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो। ठीक है, तो जो जिसने हिदायत ली, जो मुहतदी हो गया, हिदायत याफ्ता हो गया, यहतदी लनफ्सी, अपने नफ्स के लिए, जो गुमराह हो गया उसकी गुमराही का बवाल उसके अपने ऊपर। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, हर एक अपने अपने अमल में ही गिरवी हैं, अपने अपने अमल के ही सरमायेदार हैं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअथ रसूला, तो ये आज की हद तक जो हम बात कर रहे थे, ये मैं फिर वही उम्मीद करता हूँ उसको समेट दूँ कि क़यामत में हर नफ्स उस चीज़ की हकीकत को पाएगा कि जो उसने इस दुनिया में कमाई, उसकी हकीकत को पाएगा, और ये हकीकत नफ्स से बाहर नहीं होगी बल्कि अपने अंदर होगी। तो इसी वजह से अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी ने फोहशा में, बेहयाई में ज़िंदगी गुजारी, तो उसकी अपनी शक्ल में खिंजीर की शक्ल नज़र आ रही होगी, ना कि वो खिंजीर को बाहर से देखेगा, सुअर पिग। यानी कि ये उलमा ने एक मिसाल बयान की है कि दुनिया में खुदा ने बहुत सारे हैवानात को बहुत सारी सिफात के साथ रखा है। ठीक है, तो यानी कि बेहयाई और फहाशी के लिए ये जानवर है, तो बहुत सारे इंसान जो इस चीज़ की तरफ हैं, वो जब क़यामत में मशहूर होंगे तो उनमें ये शक्ल नज़र आ रही होगी, उनमें, न कि वो अपने बाहर किसी ऐसे जानवर को खड़ा हुआ देख रहे होंगे। और जिस तरीके से आवा खुमैनी ने लिखा है कि एक इंसान में न मालूम कितनी शक्लें बरामद होंगी एक नफ्स की, हाँ अगर दूसरे के पास वो आँख है, यानी खुद जब वो अपने आप को देखेगा तो कभी उसमें से ये शक्ल देख रहा होगा, कभी ये शक्ल देख रहा होगा, कभी ये शक्ल, डिपेंडिंग ऑन कि जो उसने अपना सरमाया बनाया, माँ का सबत, कि जो उसकी कमाई है वो उसकी हकीकत के तौर पर नमूदार होगी। दिन से मुराद अभी मैंने कहा था यौम, यौम यानी मरहला या स्टेज, उसको ऐसे दिन समझना गलत है कि जैसे हमारे ये दिन है।
जी कहने का पूछने का मतलब ये है कि उस जो 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 भी जजमेंट डे जो भी नाम लेते हैं, जितने भी आदम से अभी तक
जी
आए हैं सब वहाँ पर एक जगह पर मौजूद होंगे
जी,
या इस तरह का है कि जो आदमी जो है वो मर गया उसका अलग?
नहीं नहीं, जब खुदा कह रहा है कि अभी मैंने जो आयतें पढ़ी कि हम जमअनाहुम, इनको जमा करेंगे सबको उस दिन, हशर का मतलब यही है कि मशहूर होना, जमा होना, सब में सब जमा होंगे, यानी पूरी इंसानियत का हिसाब होगा, ना कि एक दो चार आदमी, वो तो चल ही रहा है कब्र में मरने के बाद।
जी सारी बात नफ्स की हो रही है
जी, यानी हमारी
जी।
हमारी
तो उसमें हमारा रिलीजन काफी प्ले करता है कि जो है उसमें, मेरा मतलब यह है पूछने का कि नफ्सानी चीजें तो मॉन्क्स में भी होती हैं मिसाल के तौर पे, जैसे एक मॉन्क है
वो नहीं नहीं यहां आप
वो सारी चीजें करेगा जो आपने बताई, ठीक है, वो एक सेक्लूडेड स्पॉट में रहेगा, वो हमेशा अल्लाह को याद करेगा, तो ये सब नफ्सानी हो गया?
नहीं नहीं, नफ्सानी से क्या मुराद है? यह मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप मिक्स नहीं कर रहे। जी जी वजाहत करें इसकी तरह,
मतलब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है मगर वो सारी चीजें कर रहा है जो उसका नफ सही तरीके से कर रहा है, मतलब
यानी हम कह लें कि वो अपने नफ्स के लिए अच्छाई का जखीरा कर रहा है
जी, वो ठीक है अपने अल्लाह को अपने तरीके से वो कर रहा है,
ठीक है,
बल्कि ज्यादा कर रहा है उसको, वो 12-12 घंटे उस एक मतलब एक चीज में बैठ के समझ रहे वो फोकस कर रहा है,
ठीक,
तो उसका नफ्स और एक जो कहते हैं हम लोग शिया जो कुरान पढ़ता है और नमाज, तो उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा फिर?
देखिए ये तो मेरे लिए बताना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हर नेक अमल जो अच्छी नीयत से किया जाए उसका नफ्स पे पॉजिटिव असर है, हर अच्छा काम जो किया जाए,
मतलब
उनको हमें हमें इस पर हमें इस पर बहस नहीं, मैंने के जिस तरीके से कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मज़ाहिब हैं, उनमें से कुछ अच्छा भी है बुरा भी है, कुरान के बारे में क्या कहता है, इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम या अहसन, अक्वम का मतलब होता है कि जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा क़वाम वाली हो, यानी खुदा ही नहीं कह रहा कि बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत अहम नुक्ता है कुरान में, कि कुरान की आयत ये क्लेम नहीं कर रही है कि बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है, खुदा ये कह रहा है कि द मोस्ट परफेक्ट द मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन फॉर एसेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज दिस, यानी हमने तुमको जो चीज पकड़ाई है ये सबसे ज्यादा काबिल अमल है और सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ये मतलब नहीं है कहने का कि किसी के पास कोई फायदेमंद चीज नहीं है, क्या चीज नहीं, तो उसकी नमाज की नौयत कुछ और है, नमाज किसे कहते हैं, नमाज की तारीफ करें,
नमाज तो अल्लाह को याद करने के लिए जो आप वो करते हैं, क्या कहते हैं,
देखिए नमाज है सलात, मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ, सलात है विसाल मिलाप, तो अब जो तरीका हमें बताया गया है मिलाप का, ये आसान भी है और मुअस्सर भी है, यानी अगर कोई हम जैसे अगर 5 वक्त की वाजिब नमाजें पढ़ते हैं, हम तवज्जो से भी पढ़ें 17 रिकत के, एक रिकत में मिसाल के तौर पर 2-3-4 मिनट लगा दें, तो पूरी की पूरी नमाज जो है वो 1.5 घंटे की है खाली, 24 घंटे में से। लेकिन अगर इस 1.5 घंटे में हम तवज्जो करने के काबिल हो जाएं, तो उस मॉन्क की 1 महीने की रियाजत से ज़्यादा पालेंगे आप। ये बात है, ये नहीं है कि वो उसकी वो रियाजत बेकार है या फजूल है या पानी में डालने के काबिल है, ये बात नहीं हो रही है। लेकिन वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो सख्त भी है और इतना फ़ायदेमंद भी नहीं है जो अंबिया ने बताया। ठीक है, ये नुक्ता नज़र है कुरान का, यानी कि कुरान का नुक्ता नज़र ये नहीं है कि बाकी किसी के पास कुछ नहीं है या सब बेकार हैं। आप यकीन करें, मतलब यू टेक माई वर्ड, आप 5 वक्त की नमाज तवज्जो से पढ़ लें, आप अपने अंदर होने वाली तब्दीली देख के हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़ा तोहफा है नमाज, और जिसको इसी वजह से हमारे तमाम उलमा ने इसके आदाब और असरार पे बहुत किताबें लिखी हैं, और इमाम खुमैनी ने तो बड़ा, यानी वो किताब आई नहीं है सामने, वो जो उन्होंने बहुत गहरी किताब लिखी है, छोटा सा है, असरार उस्सलात, उसमें उन्होंने लिखा है कि नमाज माजून कामिल है। बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, माजून कामिल, क्या आप एक दवा बनाते हैं, एक दवा ऐसी होती है कि किसी कुछ मर्ज की शफा, कुछ मर्ज की शफा, नमाज वो माजून है कि जो हर मर्ज की शफा है। तो बेसिकली बाकी लोगों के पास, हिंदू जोगियों के पास या मेडिटेशन वालों के पास या बुद्धिस्ट मॉन्क के पास तरीका है, लेकिन वो सख्त भी है, हर एक उसको अपना भी नहीं सकता, और उसको अपनाने के बाद उतनी तरक्की भी नहीं मिलेगी जो यहाँ से मिलती है। ना कि वो बेकार हो, फजूल, हम नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल गलत है या फजूल है। जी जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दीन का नुक्ता नज़र जो है वो ये नहीं है कि उसको आउटराइट रिजेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा हूँ दीन। जी, तो ये आज हमने बहुत अहम गुफ्तगू की है, और मैं चाहूँगा कि इस